इस तरह इप्सिता को परेशान देखकर अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और हमें ये बताइए कि जब आप अपनी उस फाइल को लेकर यहाँ आई थी तो आपने उस फाइल को सबसे पहले कहाँ रखा था। इप्सिता याद करने की कोशिश कर रही थी कि जब वो फाइल लेकर कमरे के अंदर आई थी तो उसने उसे कहाँ रखा था, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था। इप्सिता सोचते सोचते थोड़ी कन्फ्यूज हो गई। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस फाइल को कहाँ रख दिया, लेकिन अगर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला तो मैं एग्जाम देने कैसे जाऊंगी। इप्सिता इतना बोलकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभिमन्यु इप्सिता की आंखों में आए आंसुओं को देखकर बिल्कुल चुप हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इप्सिता अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज इप्सिता, आप रोइए मत, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर भी चुप नहीं हुई और वो इस तरह रोते हुए बोली, मैं इतनी लापरवाह क्यों हूँ? क्या मुझसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता? मैं सच में बहुत लापरवाही करती हूँ। शायद मम्मी ठीक ही कहती हैं कि मैं बहुत लापरवाह हूँ। इतना बोलकर इप्सिता रोने लगी। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह सारा दोष खुद को देखते हुए देखकर थोड़ा मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इप्सिता को किस तरह समझाए। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए कहा, इप्सिता, एक काम करते हैं, हम अभी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके देखते हैं, शायद आपका आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड की कॉपी निकलवा सकें। अगर आपके एडमिट कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी निकल आए तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगी। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और जल्दी से उठकर खड़े होते हुए बोली, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बस हमें आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी होगी, लेकिन रात काफ़ी हो गई है, पता नहीं उनसे हमारी बात हो भी पाएगी या नहीं। अभिमन्यु ये सोच ही रहा था तभी इप्सिता ने कहा, हम सच में बहुत बुरे इंसान हैं, हम जब से आपसे मिले हैं हम आपको इसी तरह की परेशानियों में डाल देते हैं ना। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु इप्सिता से बात ही कर रहा था कि तभी अभिमन्यु का ड्राइवर इप्सिता के कमरे के पास आया और उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, सर, ये कोई फाइल है जो कार में छूट गई थी। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर ड्राइवर की तरफ देखा और वो धीमी आवाज़ में बोला, ये हमारी फाइल नहीं है, हमारी तो कोई फाइल नहीं छूटी। अभिमन्यु और ड्राइवर की बात सुनकर इप्सिता अपनी जगह से आगे आते हुए बोली, किस फाइल की बात कर रहे हैं आप? इप्सिता ने जैसे ही उस ड्राइवर के हाथ में वो फाइल देखी, वो उसे देखते ही तुरंत पहचान गई और भागते हुए ड्राइवर के सामने गई। उसके हाथ से वो फाइल लेते हुए बोली, अभिमन्यु, यही तो है हमारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल, इतनी देर से हम इसी को तो ढूंढ रहे थे। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु का ड्राइवर इप्सिता को वो फाइल देकर बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। इप्सिता ने वो फाइल खोलकर देखा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड सब कुछ बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ था। इप्सिता सीधे बिस्तर पर आकर बैठी। उसने अपना एडमिट कार्ड निकालते हुए कहा, थैंक गॉड हमें ये फाइल मिल गई, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए होते। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह खुश देखकर बोला, चलो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अब आप आराम से सो जाइए, कल सुबह हम खुद आपको आपके कॉलेज छोड़ने के लिए चलेंगे। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु इप्सिता के कमरे से सीधे अपने कमरे में चला गया। इप्सिता एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और कहीं ना कहीं उसे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इप्सिता ने अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली थी और डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल मिलने के बाद से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी हो गई थी, इसलिए अपना सारा सामान ठीक से रखकर वो चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह इप्सिता जल्दी उठ गई थी, उसने तुरंत नहा धोकर एग्जाम देने जाने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं अभिमन्यु भी इप्सिता के एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, वो भी पहले से ही तैयार हो चुका था। वो इप्सिता के कमरे के बाहर आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। इप्सिता पूरी तैयार थी, उसने ध्यान से अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड उठाया और वो सीधे कमरे से बाहर निकली। उसने देखा अभिमन्यु उसके गेट पर ही खड़ा था। उसे देखकर अभिमन्यु ने कहा, रेडी हो गई ना आप? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वे दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद एक साथ विला से बाहर निकल ही रहे थे, तभी अभिमन्यु का फ़ोन बजा। अभिमन्यु कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलिए, क्या बात है? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। इप्सिता इस बात को नोटिस करते हुए बोली, क्या बात है अभिमन्यु, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली हमें साइट पर अर्जेंट जाना पड़ रहा है, शायद कोई ज़रूरी काम आ गया है। आप एक काम करिए, आप सीधे ड्राइवर के साथ अपने कॉलेज के लिए निकलिए, हम नहीं चाहते कि आप अपने पहले एग्जाम में लेट हो जाएं, और हम साइट का काम निपटा कर आ जाएंगे आपको पिक करने। इप्सिता अभिमन्यु की बात समझते हुए बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप फ्री नहीं भी होते तो आप सिर्फ गाड़ी भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम ज्यादा जरूरी है। अभिमन्यु ने कहा, नहीं, इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम आपको पिकअप करने आ जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और चुपचाप कार में बैठ गई। जैसे ही इप्सिता कार में बैठी, अभिमन्यु ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम को कॉलेज गेट के अंदर तक छोड़कर आना। ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो इप्सिता को लेकर सीधे उसके कॉलेज की तरफ निकल गया। अभिमन्यु दूसरी कार लेकर सीधे अपनी वर्किंग साइट पर पहुंचा। वो जैसे ही पहुंचा, उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम आ रही है काम में? साइट पर काम कर रहे बाकी के वर्कर्स और मैनेजर तुरंत अभिमन्यु के पास आकर खड़े हो गए और उसे वो सारा काम और जो प्रॉब्लम हो रही थी सब बताने लगे। अभिमन्यु ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, इतने छोटे से काम को भी आप लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, आखिर आप लोगों को काम पर किसने रखा? अभिमन्यु गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो इप्सिता के साथ उसके कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन इसी वजह से जब वो कॉलेज नहीं जा पाया तो उसके मन में जो गुस्सा था उसने वो वहाँ के वर्कर्स पर निकाल दिया। तभी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं हम? अपना गुस्सा इन पर क्यों निकाल रहे हैं? हम तो वैसे भी काम के लिए ही यहाँ मुंबई आए थे ना, तो फिर अब यहाँ आने में हमें इतनी जलन क्यों हो रही है? उसने दो गहरी सांसें ली और उन सब की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, चलिए हम 2 घंटे में ही सारा काम खत्म करेंगे, ओके? सब लोग अभिमन्यु के निर्देशों को सुनने लगे और जैसे ही अभिमन्यु का काम खत्म हुआ, अभिमन्यु तुरंत इप्सिता के कॉलेज के लिए निकला। उसने कार में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, कॉलेज चलिए। सीधे कॉलेज की तरफ कार मोड़कर ड्राइवर ने तुरंत उसका कहना माना और वो कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही सीधे ड्राइव करने लगा। इप्सिता नंदिनी के साथ अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकली और इप्सिता ने उससे पूछा, कैसा गया तेरा एग्जाम? नंदिनी ने थोड़ा सा मायूस होते हुए कहा, बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ, एग्जाम काफी कठिन था, लेकिन अच्छा गया। इप्सिता ने खुश होते हुए कहा, मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तेरे तो सारे एग्जाम हमेशा अच्छे जाते हैं, कौन सी बड़ी नई बात बताई मुझे? ये बता, तू अब वापस फिर से मिलने कब आएगी? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तो वैसे मन तो मेरा तेरे पास रुकने का था, लेकिन क्या करूँ, रुक नहीं सकती।
नंदिनी ने उसे साइड हग करते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो फिर हम निकलते हैं। इसी तरह इप्सिता नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नंदिनी, 1 मिनट रुको, मुझे वॉशरूम जाना है, ये मेरा पर्स और मोबाइल फ़ोन पकड़ लो, हम बस 2 मिनट में आते हैं। नंदिनी वहीं वॉशरूम के बाहर ही रुक गई थी और इप्सिता जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई, 1 मिनट बाद ही इप्सिता का फ़ोन बजा। नंदिनी ने जैसे ही कॉल पिकअप करने के लिए इप्सिता का मोबाइल फ़ोन उठाया, उसने देखा उसमें उदय का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने उदय का नाम देखकर कहा, क्या करूँ, कॉल पिकअप करूँ या नहीं? क्रमशः